हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुरु सेविए, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्ठी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्ठी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्ठी है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में, तारो तारण हारे। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में, तारो तारण हारे। माधव तू ठाकुर सिर मोरा, इया उवा तुहारो धोरा। रहाओ खीते को मेरे समाने, करण हार तृण जाने। तू दाता मांगन को सगली, दान दे प्रभ भाने। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारो। रूढ़ो गूढ़ो गैर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। अनद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। अनद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। परम सत्कार योग सात संग जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सात संग जियो, अपने मन दियां बिरतियां एकागर करो, ते गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। राग सोरठ विच पंचम पातशाह ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में, तारो तारण हारे। इस तो पहले कि असी इस शब्द वल चलिए, पहले इस शब्द रचनहार धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नु श्रद्धांजलि देनी बहुत जरूरी है, जिन्होंने संपादन किया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। साहिबां से बचपन तो अपार रहमत रही, क्योंकि वह पहले गुरु सन जिहड़े कि गुरु घर विच गुरु गोद विच पल रहे सन। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज तो सदाई 28 साल की उम्र श्री गुरु नानक जी महाराज को गए, सेवा की थी, आज्ञा का पालन किया, फिर जाके गुरु बने। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज 62 साल की उम्र 12 साल सेवा की थी, गागर ढोई, इशनान करवाया गुरु साहब ने भी, संगतों ने भी, लंगर भी वरताया, लंगर की सेवा की थी, तद गुरु पद हासिल होया। इस तरह ही श्री गुरु रामदास जी महाराज भी थोड़ी वड्डी उम्र ही आके गए, बचपन पहले आ गए अपने नानी जी के घर, पर कुछ वक्त बाद 10-12 साल की उम्र गुरु साहब खुल गए। लेकिन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का जन्म गोंदवाल साहब हुआ अपने नानके घर। सब तो पहले तो उन्होंने अपने नाना जी की अपार रहमत प्राप्त हुई, उतों ही उन्होंने मिले कि दोहता बाणी का बोहिता, ये पद उन्होंने हासिल नाना जी ने दिता। फिर ये कौन है बड़ा पुरख पारी, सब नाना जी को प्राप्त होया। उसके बाद एक आज्ञाकारी पुत्र बन के श्री गुरु रामदास जी महाराज के कुल रहे, तो गुरुगति प्राप्त की थी। इसी तरीके दे नाल अगे बढ़ते हैं। उन्होंने बचपन तो ही ये दिखलाया अपने नाना जी ने कि क्यों दोहता बाणी का बोहता किया गया। उन्होंने जो कुछ ही पोथियाँ श्री गुरु अमरदास जी को सन, भावें पहले साहब दूसरे गुरु साहब दी पोथियाँ या फिर भगतों की बाणी जी कि गुरु नानक साहब ने इकट्ठी की सी, वह पौनी वो बाणी पढ़ते रहते सन। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शुरू तो ही बचपन तो ही गुरमुखी, संस्कृत, फारसी, हिंदी हर चीज़ का ज्ञान दिता गया मेथोडिकली। इसके अलावा नेजेबाजी, तलवार सब सिखाई गई गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ही होया, उन्होंने वड्डे तो भरावों नहीं होया, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं हुई। गुरु कृपा, गुरु प्रसाद की बहुत जरूरत है। सो गुरु साहब गद्दी से आते हैं, और ये सच है गुरु साहब के काल में ही सिखी का बहुत ज़्यादा प्रचार होया। उन्होंने एक सरल तरीका अपनाया प्रचार करन दा, नियम लिता के नाम जपो, दसवंध कढ़ो, वन टेंथ। पहले सी कि जो भी भेटा आ जाती सी पसंदा के थ्रू, मंजीदारा के थ्रू, लेकिन हम पक्का करता दसवंध, वन टेंथ। उसके बाद जिस तरीके उन्होंने प्रचार किया सिंपल शब्दों में, भाई मान जी ने कहा कि सिखी तो सिखी नहीं चढ़ती, तो भाई मान जी क्या अपने घर वापस, उस सखी सरवर का मुख प्रचारक से उसने पीर खाना तोड़िया, पीर ना सारे संबंध तोड़े, ऑटोमैटिकली हो जड़े सेवक सन पीर दे संबंध टुटा, उन्होंने नाल पिंड की लंबरदारी भी गई, कंगाल हो गया। पर अंत विच गुरु साहिब का एक परम सिख बनया। गुरु साहब ने कह दिता, मंझ प्यारा मुझको गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहता चक लंघन हार। भाई बहलो ने की किया कि भाई बहलो सब तो उत्तम श्रद्धा है, बाकी भक्ति तो उसका एक कवच है। और उसने अपनाया कि भाई गुरु साहब ने कहा, भाई पहलो सब तो पहलो। इसी तरीके के नाल हर एक सिख ने इस तरह किया, जीवन मुक्ति के बारे क्या किस तरीके दे नाल जीवन मुक्ति हासिल करनी है। सहज अवस्था च भाई भिखारी ने अपने बेटे का मृत्यु का सोग ना मनाते हुए मृत्यु सिर्फ नाम नाम की याचना की थी गुरु को ना कि जीव अपने बेटे की लंबी उम्र। सो इस तरीके दे नाल गुरु साहब ने अपने सिखा नू सिंपल तरीके नाल शिक्षा दी। और सब तो वड्डी जी देन गुरु साहब की है गुरु अर्जन देव जी महाराज की वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना। क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने जो दोषी सन जो दुश्मन सन जो शरीक सन उन्होंने उन्होंने प्राप्त किया उन्होंने बेटा मेहरबान तो होर लोग बाणी च मिलावट करन लग गए सन अपनी बाणी लिख के गुरु नानक साहब का नाम लिख पा के और प्रचार कर रहे सन। और अगर तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बणतर देखो पाठ करो तो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं नंबरिंग किस तरह लिखी हुई है राग है राग के बाद शब्द है शब्द बाद नंबर है कितने शब्द हैं। सबसे पहले गुरु नानक साहब थे फिर कुछ श्लोक श्री गुरु अंगद देव जी महाराज थे गुरु अमरदास जी थे श्री गुरु रामदास जी महाराज तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ती रागों में अपारण उच्चारण की थी। इकतीवां राग बाद विच आया इस बाद भगतां की बाणी उस बाद जो गुरु सिख सन उस बाद पठां की बाणी इस तरीके दे नाल उन्होंने मेथोडिकली सब कुछ किया ताकि मिलावट ना हो सके। मैं खुद अपनी अखा नाल पढ़िया श्लोक महला 11 अखंड पाठ साहब का भोग पाने ना आखिर जाके एक होर अंग आता देखते हैं आस पास उत्थे लिखा होता सी इतनी मिलावट हो चुकी सी कि साहिबा ने अपनी बाणी जी है संपादन ठीक तरह की थी। उन्होंने जड़िया बाणिया हैं उन्होंने बारे कुछ कहना है। गुरु साहब ने भाई गुरदास ने कहा कि कलयुग है कठिन वक्त है। गुरु साहब ने भाई गुरदास जी ने कहा कि जब समाधान की है तो गुरु साहब ने कहा सुखमनी और रामदास रामसर के कंडे पर बैठ के सुखमनी का उच्चारण किया। जिन्हें 24 पौड़ियाँ जड़िया हैं साढ़े जीवन जाच सिखादियाँ सानू किस तरह असी वक्त बिताना है। फिर आ जाने असी 12 माह काव्य से बड़ा मैथोडिकली लिखा उन्होंने पहले कि हर महीना तो कुदरत कैसी है कैसा मौसम बदलता है और उस मौसम का मनुखी मन पर की असर पैंदा है और उसने आध्यात्मिक रूप दिता। इस तरीके दे नाल असी आ जाने श्लोक सहस्कृति ते गाथा बहुत मुश्किल बाणियां हैं लेकिन तो ये बणतर जी है रवान की ये बड़ी सिंपल है। इस तरह होर बाणियां हैं लेकिन बाणी का रूप उन्होंने बहुत सरल रखा जिस तरह कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज या गुरु रामदास जी महाराज की बाणी थोड़ी मुश्किल जी लगती है लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी बहुत सिंपल है और मिठी है। इसी करके तुसी सुखमनी साहब 2 दफ़ा पढ़ो 3 दफ़ा पढ़ो तो याद हो जाता है। सो ये उन्होंने देन है सानू असी उन्होंने उन्होंने शब्द थे सोरट महला 5वां घर दूजा। सो कीर्ति ने उन्होंने बताया था कि दूजे घर विच घर इस ताल विच गाना है मात गर्भ में आपने सिमरन दे तह तुम राखन हारे। गुरु साहब कह रहे हैं कि जन्म तो पहले भी गर्भ दे विच विच प्रभु सानू नाम जपांदा है पराबाणी द्वारा पराबाणी जिसकी उत्पत्ति नाभि तो होंदी है ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਜਦ ਕੰਠ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਖਰੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧਮਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗਰਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਰਕਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ। ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਪਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਆਖਣ ਹਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁੰਡ, ਇੱਕ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅੰਧੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਨਰੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਮਕਾਨ, ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਰੋ, ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਇਹ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਮਾਇਆਪਤੀ ਮਾਧੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ, माधव तू ठाकुर सिर मोरा, यहाँ वहाँ तुहारो धोरा। इस जन्म में ते अगले जन्म में यहाँ वहाँ यहाँ इस जन्म वहाँ परलोक तो ना भी तेरा ही आसरा है, इसके अलावा सड़क कोई आसरा नहीं है। तू ही सोने पहचान वाला है, वो सड़क कोई रक्षक नहीं है। वाल्मीकि नु देख लो, वाल्मीकि एक अच्छे राजपूत घराने वैसे, लेकिन वक्त नाल उसनु जंगल से रहना पिया, उसनु अच्छे काम छड़ के डाकू का रूप धारण करना पिया, और आंदे जाते साधुओं जा नु मार के लुट के घर का गुजारा करता से, माता पिता का पत्नी ते बच्चियां दा। एक दिन ऐसे साधु आए, इसने घेर लिया उन्होंने। साधु कहें तू की करना चाहना, कहें तेन मार के असी थोड़े जेब खाली करना चाहना। क्यों भाई? वो घर चलाना मैं अपना, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का गुजारा करना। तो कहा ठीक है, तू घर जाके पूछ जाके उन्होंने कि तेरा अंत भी सारा देंगे तो तू मरेगा, उस धर्मराज के सामने तेरा सहारा देंगे। तो वाल्मीकि ने उन्होंने बनिया कर गया, माता पिता ने पूछा, उन्होंने कहा देख भाई असि तेरी परवरिश की थी, मैंने पूछा तेरा साथ देगा कि नहीं, बीवी ने यही किया। तो वाल्मीकि वापस आ गया, संतान ने छोड़ता, कहते हूँ मैं क्या करा, मैं तो मारता ही रहा। उन्होंने ठीक है तो मरा मरा कर, राम तक जप नहीं सकता, मरा मरा जपते जपते राम राम हो गया। वह ना तो कुछ होर सी, लेकिन उसे आस पास मिट्टी के ढेर हो गए, जिस के थोड़ी कीड़े मकौड़ियाँ का घर बन जाता है, उसने वाल्मीकि कहते हैं। जब तपस्या पूरी हुई उसी, उसने उस केर नु दूर किया, मिट्टी के ढेर न, लोगों ने उसने वाल्मीकि कहना शुरू करता। तो तुरते तुरते तमसा नदी से गया, तमसा नदी के किनारे जाके कि देखता है कि जंगल एक पेड़ के ऊपर एक दो पंछी प्रेम कलोल कर रहे हैं। इतने बच्चे शिकारी आता है और वो जरा मेल है उसको मार देता है, मेल पंछी नु मार देता है, और जी पिछे जी चिड़ी रह जाती है वो विरलाप करती है। ये विरलाप देख के वाल्मीकि कहना उस शिकारी नु एक शाप देता है कि जिस तरीके के नाल तो उसको मारिया है तेरी मौत होएगी, तेरी बीवी तड़पेगी। पर उसमें अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन जब उसने रिपीट करता है उस दोहे नु तो उसको प्रेम हो जाता है उस नाल। इतनी वधिया कविता में रह सकता उस नाल, उसका शिष्य सी उसने कहा लिख लिया इसनों मैं भूलना चाहवा। तो वक्त आनते उसी वाल्मीकि ने उसनों ब्रह्मा का पहला अवतार गिनाया गया, ब्रह्मा का पहला अवतार। उसने सोझी हो गई श्री रामचंद्र जी के बारे, उन्होंने जीवनी के बारे, उन्होंने बिना मिले उन्होंने उन्हें रामायण लिखनी शुरू कर दी थी। वो जंगल गए श्री रामचंद्र जी महाराज, उसे सीता और रामचंद्र जी का वार्तालाप उसका बोध हो गया, उसने वो लिखना शुरू कर दिया। उसने जिस वक्त सीता जी नू रामचंद्र जी वालों वनवास दिता जाता है, वो जाके वाल्मीकि की कुटिया च रहते हैं, उत्थे तक लिख चुका सी। उत्थे जाके लव कुश का जन्म होता है, लव कुश की परवरिश होती है, फिर अश्वमेघ जग का जाना, फिर लक्ष्मण नू मूर्छित करना, शत्रुघ्न नू मूर्छित करना, भरत नू मूर्छित करना, अंत श्री रामचंद्र जी महाराज का मुकाबला। ऐसा होया कि लव कुश ने अपने मां नू कहा जाके माता ये सब तो बड़ा राजा जो है ना ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮੂਰਛਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਇਆਂ ਉਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ਰਹਾਉ, ਕੀਤੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਵਤ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣ, ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੱਖ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਨੇ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਅਵਰ, ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੋ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਅਵਰ, ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੋ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਸ਼ਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਪਾਂਡਵ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਅਵਰ, ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰ ਚਲਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਊਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ। ਰੂੜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੂੜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਓ, तो सुनी तुम्हारी बाणी, जद सात संगत ने मिला दिता तुम्हारे नाल प्रभु, जद मिलाप तेरे मिलाप तुझे खुद सात संगत ने मिला दिता, साधुओं संगत ने मिला दिता, तद तेरी बाणी सुनी, तद तेरी बाणी समझी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी, अनंत भया पे खची नानक प्रताक प्रताप पुरख निर्भाणी। श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत भया पे खची देखते ही प्रताप पुरख निर्भाणी, तेरा प्रताप तेरे प्रभु का पुरख मिलन के नाल अनंत प्राप्त होया। इस तरीके दे नाल इस शब्द का व्याख्यान होया है जी। फुल चुक दी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।